بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کاریکرم کا آرمبھ ہم پوتر قرآن مجید کی تلاوت ایوم انواع سے کریں گے۔ آج آپ قرآن مجید کے سورہ اسراء کی 13، 14، 15 اور 16 آیتوں کی تلاوت اور انواع سنیں گے۔ قاری ہیں شری رفیع۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا۔ اقْرَأْ كِتَابَكَ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدبيرا۔ صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیان کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور ہر منوش کا کرم پتر ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور پرلے کے دن اسے ایک کھلی ہوئی کتاب کی بھانتی پرستت کریں گے کہ اب اپنی کتاب کو پڑھ لو، آج تمہارے حساب کے لیے تم ہی کافی ہو۔ جو کوئی مارگ درشن پراپت کرتا ہے وہ اپنے لابھ کے لیے کرتا ہے، और जो पथभ्रष्ट हो जाता है वो भी अपना ही नुकसान करता है और कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है। और हम लोगों को उस समय तक दंड नहीं देते जब तक उनके बीच कोई रसूल न भेज दें। और जब हम किसी बस्ती को विनष्ट करने का इरादा कर लेते हैं तो वहाँ के सुखभोगी लोगों को आदेश देते हैं, जब वे उसकी अवज्ञा करते हैं तो हमारी बात सिद्ध हो जाती है, फिर हम उसे बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकते हैं।
ये रेडियो तहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओ, हमारा ये प्रसारण आप शार्टवे में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज सोमवार है, तीर की 19, ज़िलहिज्जा की 21 और जुलाई की 10 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद राजनीतिक चर्चा, उसके बाद हम आपको सुनाएंगे विश्व दर्पण और अंतिम कार्यक्रम होगा वहाबियत और वास्तविकता। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। अब आप सैयद मीसम और मरियम मेहरदादी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी मंगलवार को अफ्रीका के 3 देशों की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। ब्रिक्स के साझा मुद्रा जारी करने के कदम से अमेरिका और यूरोप को तगड़ा झटका लग सकता है। हिमाचल में भारी बारिश की वजह से 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी मंगलवार को अफ्रीका के 3 देशों की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जो पिछले 11 वर्षों में किसी ईरानी राष्ट्रपति की इस महाद्वीप की पहली यात्रा होगी। ईरानी राष्ट्रपति के 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा का उद्देश्य लगभग 3.1 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद वाले क्षेत्र में ईरान की भूमिका को विस्तृत करना है। ईरानी राष्ट्रपति 3 देशों केनिया, जिम्बाब्वे और युगांडा के अपने समकक्षों के आधिकारिक निमंत्रण पर ये यात्रा करने जा रहे हैं। 2005 और 2006 के बीच ईरान और अफ्रीका के बीच व्यापार में वृद्धि हुई, लेकिन वैश्विक वित्तीय संकट और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण 2007 से इसमें गिरावट होना शुरू हो गई। ईरान व्यापार विकास संगठन के महानिदेशक के अनुसार स्थिति फिर से बदलने जा रही है और उम्मीद है कि अगले 3 वर्षों में अफ्रीका के साथ ईरान का व्यापार 10 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। जनसंख्या वृद्धि और विश्व के लगभग 30% खनिज भंडार के साथ अफ्रीका दुनिया की 18% आबादी का केंद्र है। इस महाद्वीप के कुछ देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं। अफ्रीका कृषि योग्य भूमि, पानी, तेल, प्राकृतिक गैस, खनिज, वन और वन्य जीवन जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। इस महाद्वीप में दुनिया का 40% सोना और 90% तक क्रोमियम और प्लेटिनम मौजूद है। दुनिया में कोबाल्ट, हीरे, प्लेटिनम और यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार अफ्रीका में ही है।
ईरान ने पिछले कुछ महीनों के दौरान तेल की पैदावार में निरंतर वृद्धि करके ओपेक में पैदावार के लिहाज से अपनी चौथी पोजीशन बरकरार रखी है। एनर्जी की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने बताया कि जारी वर्ष के पांचवें महीने में ईरान की प्रतिदिन तेल की पैदावार में 80,000 बैरल की वृद्धि हुई है और अब ईरान 28,70,000 बैरल प्रतिदिन तेल की पैदावार कर रहा है। ईरान ने जारी महीने में ओपेक के सारे सदस्यों में सबसे ज्यादा पैदावार बढ़ाने का रिकॉर्ड भी बनाया है। अंगोला ने जारी महीने में 50,000 बैरल प्रतिदिन, गैबन ने 10,000 बैरल, नाइजीरिया ने 20,000 बैरल, लीबिया ने 20,000 बैरल और वेनेजुएला ने भी 20,000 बैरल प्रतिदिन तेल की पैदावार में वृद्धि की है, जबकि अन्य सदस्यों ने या तो पैदावार में कमी की या फिर उनकी तेल की पैदावार में परिवर्तन नहीं हुआ। ईरान ने पिछले कुछ महीनों के दौरान तेल की पैदावार में निरंतर वृद्धि करके कुवैत को पीछे छोड़ते हुए ओपेक में पैदावार के लिहाज से अपनी चौथी पोजीशन बरकरार रखी है।
ईरान के एक वरिष्ठ राजनयिक ने ब्रिक्स सदस्य देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक साझा मुद्रा शुरू करने की योजना की सराहना की है और इस बात पर जोर दिया है कि यह कदम ईरान के लिए फायदेमंद साबित होगा और अमरीकी डॉलर और यूरो के प्रभुत्व को चुनौती देगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के दक्षिण एशिया कार्यालय के प्रमुख रसूल मूसवी ने रविवार को कहा, ब्रिक्स सदस्य देशों का ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक जबरदस्त बदलाव का संकेत है। मूसवी का कहना था कि ब्रिक्स द्वारा गोल्ड बैग करेंसी की शुरुआत, जिसे बड़े और प्रभावशाली अर्थव्यवस्था वाले 41 देशों का समर्थन प्राप्त है, डॉलर और यूरो को कमजोर करेगी और ईरान जैसे देशों को लाभ पहुंचाएगी। प्राथमिक सदस्यों के रूप में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ ब्रिक्स गठबंधन ने हाल ही में अमरीकी डॉलर की वैश्विक स्थिति को चुनौती देते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भुगतान का निपटान करने के लिए एक साझा मुद्रा जारी करने की योजना की घोषणा की है। ऐसा माना जा रहा है कि 5 देशों का ये समूह अगस्त में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन के दौरान नई ब्रिक्स मुद्रा शुरू करने के बारे में अंतिम निर्णय लेगा। रूसी सरकार ने एक दिन पहले ही पुष्टि की थी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सोने द्वारा समर्थित एक नई व्यापारिक मुद्रा जारी करेंगे।
इस्लामी गणतंत्र ईरान की थल सेना के एयरविंग के युद्धक हेलीकॉप्टरों को इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के उपकरणों से लैस कर दिया गया है। इस्लामी गणतंत्र ईरान के आर्मी एविएशन के कमांडर जनरल यूसुफ कुर्बानी ने बताया है कि एयरविंग के हेलीकॉप्टरों को ऐसे नवीन व आधुनिक सिस्टम से लैस कर दिया गया है जो कि मैदान जंग में दुश्मनों के हेलीकॉप्टरों के सिस्टम्स को जाम करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने बताया कि इन सिस्टम्स के जरिए दुश्मन हेलीकॉप्टरों को गलत इन्फॉर्मेशन देकर धोखा भी दिया जा सकता है। आर्मी एविएशन के कमांडर इन चीफ ने बताया कि कोबरा जंग हेलीकॉप्टर सहित सारे हेलीकॉप्टर एयरविंग के इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस हो गए हैं। इससे पहले सेना की एक प्रदर्शनी में हेलीकॉप्टरों पर लगे रडार सिस्टम्स का अनावरण किया गया था, किंतु उस समय उसका ब्यौरा सामने नहीं आया था। ज्ञात रहे कि इस्लामी गणतंत्र ईरान की सशस्त्र सेना की आवश्यकता ज्यादा से ज्यादा उपकरणों और हथियार देश के भीतर तैयार हो रहे हैं, जिसके परिणाम में ईरान ने क्षेत्र में शक्ति के संतुलन को अपने पक्ष में मोड़ लिया है।
हिमाचल प्रदेश समेत भारत के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से आम जिंदगी प्रभावित हुई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कम 20 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के कई इलाकों में स्थिति परेशान करने वाली है। 1300 से ज्यादा सड़कें प्रभावित हुई हैं। राज्य में अगले 24 घंटे में भारी बारिश जारी रहने की संभावना के बीच वहां के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से अगले 24 घंटों तक घरों से नहीं निकलने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, प्रदेश के लोगों से एक बार फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि वे अगले 24 घंटों तक घरों में रहें। अगले 24 घंटों में बहुत तेज बारिश की संभावना है। उन्होंने विधायकों से अपील की है कि वे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में लोगों की मदद करें। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से ब्यास समेत कई नदियां उफान पर हैं। मनाली और कुल्लू में ब्यास के किनारे भारी तबाही हुई है। नदी के तेज बहाव में कई मकान और गाड़ियां बह गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट के जरिए हिमाचल और उत्तराखंड में हुई लोगों की मौतों पर दुख जताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि राहत कार्यों में वो प्रशासन की सहायता करें। इस प्राकृतिक आपदा की कठिन चुनौती का हम सभी को मिलकर सामना करना है। इस बीच देश भर में हो रही तेज बारिश के बीच दिल्ली में अब बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और मंगलवार को ये खतरे के निशान को पार कर जाएगा।
भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को आगाह करते हुए कहा कि ये कदम एक साथ सभी अल्पसंख्यक समुदायों को नाराज कर देगा। गुलाम नबी आजाद ने जोर देकर कहा कि यूसीसी को लागू करना अनुच्छेद 370 को रद्द करने जितना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें सभी धर्म शामिल हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि इसे लागू करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। यह अनुच्छेद 370 को रद्द करने जितना आसान नहीं है, इसमें सभी धर्म शामिल हैं, न केवल मुस्लिम बल्कि ईसाई और सिख के अलावा आदिवासी, जैन, पारसी भी हैं। एक साथ इन सभी लोगों को नाराज करना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसलिए मैं इस सरकार को सुझाव देता हूं कि वो ये कदम उठाने के बारे में सोचे भी नहीं। मालूम हो कि समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि सभी लोग, चाहे वो किसी भी क्षेत्र या धर्म के हों, नागरिक कानूनों के एक समूह के तहत बंधे होंगे। समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के एक सामान्य समूह को संदर्भित करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। वर्तमान में विभिन्न धर्मों के अलग अलग व्यक्तिगत कानून यानी पर्सनल लॉ हैं। यूसीसी का कार्यान्वयन दशकों से भाजपा के एजेंडे में रहा है, लेकिन बीते जून महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश में एक रैली के दौरान जिसकी जोरदार वकालत करने के बाद इसे लेकर नए सिरे से राजनीतिक विमर्श शुरू हो गया है।
चीन के एक किंडरगार्टन में चाकू से किए गए हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने एक 25 वर्षीय संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार किया है। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के एक किंडरगार्टन में चाकू से किए गए हमले में 6 लोगों की मौत के अलावा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस का कहना है कि उसने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है और हमले की वजह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। पुलिस ने अभी पीड़ितों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन उसका कहना है कि हमला इरादतन किया गया है।
कट्टरपंथी इसराइल ने सेना के समर्थन में एक बार फिर मस्जिद उल अक्सा पर हमला किया। फिलिस्तीनी सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों कट्टरपंथी जौनियों ने मस्जिद उल अक्सा में घुसकर इस्लाम के विरुद्ध नारे लगाए और हॉर्न बनाए। पहले किबले के अनादर पर फिलिस्तीनी जनता में आक्रोश पाया जाता है। इससे पहले मस्जिद उल अक्सा के इमाम शेख अकरमा सबरी ने अवैध अधिकृत फिलिस्तीन में ज़ायनी शासन की शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों के संबंध में सचेत करते हुए कहा था कि फिलिस्तीन जनता किसी भी प्रकार इसराइल को मस्जिद उल अक्सा के किसी भी भाग पर कब्जा नहीं करने देगी। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोतो, आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। राजनीतिक चर्चा में आज हम बात करेंगे इस्लामी गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति की अफ्रीकी देशों की यात्रा के बारे में। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में हम एक नजर डालेंगे फिलिस्तीन के इलाके जेनिन के हालात पर। भारत में भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण कई लोगों की मौतें हुई हैं, इस विषय में एक रिपोर्ट हम आपको सुनाएंगे। तो चर्चा के विषय यही है, आरंभ करते हैं इस्लामी गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति की अफ्रीका यात्रा से। इस्लामी गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी मंगलवार से अफ्रीकी देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय रूप से कई सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इस यात्रा को अफ्रीकी देशों के बारे में इस्लामी गणराज्य ईरान के सैद्धांतिक नीतियों के महत्वपूर्ण क्रम के रूप में देखा जा रहा है। जायजा ले रहे हैं अख्तर अब्बास।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति केन्या, युगांडा और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपतियों के आधिकारिक निमंत्रण पर मंगलवार सुबह अफ्रीका की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। केन्या, युगांडा और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें, सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और ईरान तथा मेजबान देशों के व्यापारियों, व्यापारिक कार्यकर्ताओं और आर्थिक अधिकारियों के साथ बैठकें करना ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी के एजेंडे का हिस्सा है। सैयद इब्राहिम रईसी ने ईरान के राष्ट्रपति के रूप में 15 विदेश यात्राएं की हैं और 11 वर्ष के बाद अफ्रीका की यात्रा करने वाले वो ईरान के पहले राष्ट्रपति होंगे। मार्च 2023 को ईरान के राष्ट्रपति ने तेहरान और पश्चिम अफ्रीकी देशों के बीच पहले आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के प्रतिभागियों के साथ एक मुलाकात में अफ्रीकी देशों के साथ व्यापक रूप से सहयोग का विस्तार करने के लिए तेहरान की तत्परता का ऐलान किया था। इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद इस्लामी गणतंत्र ईरान ने राजनीतिक और सांस्कृतिक समानताओं के कारण हमेशा अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों के विकास का प्रयास किया। सैयद इब्राहिम रईसी के नेतृत्व वाली ईरान की वर्तमान सरकार आर्थिक बहुपक्षवाद पर आधारित व्यापक व संतुलित विदेश नीति के अंतर्गत अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों के विस्तार पर भी गंभीरता से ध्यान देती है। इस संबंध में पिछले वर्ष ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने माली गणराज्य और वहां से तंजानिया और जंजीबार की यात्रा की और इन अफ्रीकी देशों के अधिकारियों से सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। वर्तमान सरकार के इस दृष्टिकोण की वजह से गैर पेट्रोलियम निर्यात विकास कार्यक्रम और अफ्रीका के साथ व्यापार संबंधों का विस्तार तेज हो गया और पिछले 1.5 साल में अफ्रीका से 50 से अधिक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडलों ने ईरान की यात्रा की, जिसके दौरान अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके बावजूद ईरान और अफ्रीकी देशों के बीच व्यापार का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन ये 10 अरब के लक्ष्य से काफी दूर है। वर्तमान समय में अफ्रीका का आयात लगभग 600 अरब डॉलर घोषित किया गया, लेकिन इस राशि में ईरान का हिस्सा 2 अरब डॉलर तक भी नहीं पहुंचता। इस बीच ईरान और अफ्रीका के बीच सहयोग और बढ़ते व्यापार संबंध, विशेष रूप से ऊर्जा, तकनीकी इंजीनियरिंग, परिवहन, कृषि और खनन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है और मौजूद बाधाओं को दूर करके इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। ईरानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सर्वोच्च पर्यवेक्षक परिषद के सचिव अली रजा पैमान पाक ने इस संबंध में कहा कि ईरान और अफ्रीकी महाद्वीप के बीच व्यापार में वृद्धि करने के लिए नियमित शिपिंग लाइनों की स्थापना, बुनियादी ढांचा प्रदान करना, निकासी बढ़ाना और व्यापार शुल्क कम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
फिलिस्तीन में वेस्ट बैंक के शहर जेनिन में ज़ायनी सैनिकों की बर्बरता की भयानक और हृदय विदारक झलकियां सामने आ रही हैं। ज़ायनी सैनिकों के हमले में एक 5 साल के फिलिस्तीनी बच्चे की आंख चली गई। ज़ायनी सैनिक हालिया कई हफ्तों से जनीन के इलाके पर लगातार हमले कर रहे हैं और इन हमलों में दर्जनों की संख्या में फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं। घायलों की संख्या कई सौ बताई जाती है। IRIB के संवाददाता खालिद सबर्ना की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं रविश जैदी।
5 वर्षीय खालिद जो अपने पिता के साथ जनीन क्षेत्र में एक पारिवारिक पार्टी में गया था कि अचानक आतंकी ज़ायनी सैनिकों द्वारा किए गए हमले में उसकी एक आंख चली गई। आतंकी इसराइली सैनिक लगातार जनीन क्षेत्र में फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहे थे कि तभी उन्होंने अंधाधुन आम लोगों की ओर प्लास्टिक की गोलियों से फायर करना शुरू कर दिया और इस बीच एक गोली मासूम खालिद की आंख में उस समय जा लगी जब वो अपने पिता की गोद में था। खालिद की मां कहती है कि खालिद की एक आंख चली गई है, उसकी मानसिक स्थिति भी अब ठीक नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं जाता है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उसको पहले वाली स्थिति पर वापस ले आऊं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। इस बच्चे की आंख बचाने के लिए वेस्ट बैंक के अस्पतालों और अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के क्षेत्रों के डॉक्टरों के प्रयास असफल रहे। वे उसकी आंख को निकालने के लिए मजबूर हो गए, जिसके बाद से खालिद मनोवैज्ञानिक तौर पर दबाव में आ गया है और वो अब अपने साथी बच्चों के साथ खेलने भी नहीं जाता है। खालिद के दादा का कहना है कि जिस समय ये घटना हुई, संयोग से वहाँ एम्बुलेंस पहले से मौजूद थी। तुरंत ही उसको पास के अस्पताल ले गए, जहाँ के डॉक्टरों ने खालिद को दूसरे अस्पताल ले जाने को कहा। हम दूसरे अस्पताल भी पहुंचे, जहां आंखों के विशेषज्ञों ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया, लेकिन वो भी खालिद की आंख को बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। खालिद की मां कहती है कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि खालिद फिर से अपनी पहले वाली कंडीशन पर लौट आए। खालिद के पिता का कहना है कि जब मेरा बेटा होश में आया तो उसने एक सवाल किया कि जिससे मेरा दिल टूट गया। उसने पूछा, बाबा मेरी आंख कहाँ है। खालिद के पिता का कहना है कि अभी तक हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कैसे हुआ। इस घटना के बाद से मेरे बेटे की मनोवैज्ञानिक स्थिति भी ठीक नहीं है, वो लोगों का सामना करने से बचता है, चश्मे के पीछे अपनी आंख छिपाने की कोशिश करता है। फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि खालिद जीवित है और हमारे साथ है। हाल ही में जनीन कैंप पर आतंकी इसराइली सेना के पाशविक हमलों में 4 बच्चे शहीद और दर्जनों घायल हुए हैं। वर्ष 2000 से आज तक आतंकी ज़ायुनी शासन ने 2,270 फिलिस्तीनी बच्चों को शहीद कर दिया है और 70,000 से अधिक अन्य को घायल कर दिया है। घायलों में से लगभग 40% विकलांगता और स्थायी विकलांगता से पीड़ित हैं और 65% शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक के कट जाने या बेकार हो जाने से पीड़ित हैं। बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली अमल खलील का कहना है कि आतंकी इसराइल हमेशा फिलिस्तीनी बच्चों को निशाना बनाता है, उसका इसके पीछे एक ही उद्देश्य है और वो यह है कि ज़ायनी शासन भविष्य में फिलिस्तीनी जियालों द्वारा किए जाने वाले प्रतिरोध को कमजोर करना चाहता है। फिलिस्तीन में खालिद की तरह हजारों बच्चे हैं जो अवैध आतंकी ज़ायनी शासन के जुल्म का शिकार हो रहे हैं, लेकिन मानवाधिकारों को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाले देश फिलिस्तीन के मासूम बच्चों पर होते जुल्म के आगे चुप्पी साधे रहते हैं। फिलिस्तीन से IRIB के संवाददाता खालिद सबर्ना की रिपोर्ट।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
भारत में भारी वर्षा और भूस्खलन की कई घटनाएं हुई और इन घटनाओं में अनेक लोगों की जान चली गई। एक रिपोर्ट के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
उत्तरी भारत में निरंतर मूसलाधार वर्षा और भूस्खलन के कारण 28 लोगों के हताहत होने का समाचार है। इन घटनाओं में हिमाचल प्रदेश में 14, उत्तराखंड में 9 और दिल्ली में 5 लोग हताहत हुए हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों की तेज और मूसलाधार बारिश और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने से कई मकान, पुल और सड़क ताश के पत्तों की तरह बिखर गए और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बारिश ने सबसे अधिक तबाही मचाई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में तेज वर्षा हो सकती है, जिसे देखते हुए नागरिकों को सतर्क कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आम नागरिकों को सतर्क रहने, घर से बाहर न निकलने और स्थिति से निमटने हेतु प्रशासन के साथ सहयोग करने का आह्वान किया है। राजधानी दिल्ली में भी निरंतर 3 दिनों की वर्षा के कारण कई सड़कों और कई घरों में पानी जमा हो गया था। जमुना सहित भारत की कई नदियां उफान पर हैं और हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से दिल्ली में जमुना नदी का पानी खतरे के निशान को पार करने की आशंका है। इस खतरे को देखते हुए जमुना के किनारे झुग्गियों में रहने वालों को प्रशासन द्वारा दूसरे सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन के अतिरिक्त NDRF और SDRF की टीमें प्रभावित लोगों को राहत पहुँचाने का प्रयास कर रही है। बताया जाता है कि दिल्ली में जुलाई में बारिश ने पिछले 41 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में वर्षा की आशंका को देखते हुए चेतावनी जारी कर दी गई है और दिल्ली और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों के स्कूल आज बंद कर दिए गए हैं। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम समाप्त होता है।
प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम विश्व दर्पण।
विश्व दर्पण। दोस्तों, विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम स्वीडन में पवित्र कुरान के अनादर और पूरी दुनिया से आने वाली प्रतिक्रिया पर चर्चा करेंगे। अख्तर रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए। स्वीडन में सरकार की अनुमति और इशारे पर एक इस्लाम दुश्मन कट्टरपंथी के हाथों पवित्र कुरान के अनादर के खिलाफ ईरान सहित पूरी दुनिया में भयंकर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। इस्लामी गणतंत्र ईरान की सरकार और जनता के विभिन्न वर्गों से संबंध रखने वाले विभिन्न संगठनों और संस्थाओं ने स्वीडन सरकार से मांग की है कि वो पवित्र कुरान के अनादर की भरपाई के लिए कार्रवाई करे और इस बात को सुनिश्चित बनाए कि इस प्रकार की अपमानजनक कार्रवाइयां नहीं होने देंगे। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि स्वीडन सरकार ने पूरी दुनिया के मुसलमानों का विरोध सुन लिया और इस्लामी पवित्र चीजों का अनादर उन सभी लोगों का अपमान है जो आसमानी धर्मों के वास्तविक अनुयायी हैं। ईरान ने स्वीडन में पवित्र कुरान के अनादर खिलाफ आपत्ति जताते हुए अपने राजदूत को स्वीडन भेजने से इनकार कर दिया। इस क्रूर और अपमानजनक घटना के खिलाफ पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरानी छात्रों ने अपने तेहरान में स्वीडन के दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया और इस कृत्य को अंजाम देने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की।
سفارت اهانت تعطیل باید گردد.
OIC ने भी अपनी आपातकालीन बैठक में कहा कि बार बार पवित्र कुरान के अनादर को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाइयों की जरूरत है। OIC की ओर से जारी बयान से संबंधित देशों में कहा गया है कि वो इस प्रकार की कार्रवाइयों की निंदा करें और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं के दोहराए जाने को रोकने को सुनिश्चित बनाएं। बयान में कहा गया है कि अब समय आ गया है कि पवित्र कुरान का अनादर और पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी को रोकने के लिए सामूहिक कार्रवाइयां की जाएं और विश्व समुदाय इस बारे में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। ज्ञात रहे कि स्वीडन, हॉलैंड, डेनमार्क और फ्रांस जैसे तथाकथित सभ्य देशों में कुरान करीम और इस्लामी चीजों की शान में गुस्ताखियों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये घटनाएं एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दी जा रही हैं। उनका मकसद मुसलमानों पर दबाव डालना और इस्लामोफोबिया को हवा देना है। उनमें कोई शक नहीं है कि इन घटनाओं के पीछे ज़ायोनियों का बड़ा रोल है, जो विभिन्न मोर्चों पर प्रतिरोधक बलों से पराजित होने के बाद विश्व जनमत को इस प्रकार की घटनाओं के द्वारा गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुश्मन को यह मालूम होना चाहिए कि कुरान और शान-ए-रिसालत समेत इस्लामी पवित्र चीजें ऐसे केंद्र हैं जिन पर मुसलमान पहले से अधिक एकजुट होंगे और इस्लाम दुश्मन ताकतों की घिनौनी साजिशें नाकाम होंगी। ब्रिटेन में भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। स्वीडन में बार बार इस प्रकार की घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं। इसके कारणों पर रोशनी डालते हुए टीकाकार गुलशन अब्बास नकवी कहते हैं,
इस मर्तबा जो कुरान करीम की बेहरमती की गई है स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है और पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी खुद स्वीडन में ही कुरान करीम की बेहरमती की जा चुकी है। और इस बार अगरचे एक आम फर्द ने की है, लेकिन इससे पहले जो की गई थी वो खुद स्वीडन के एक सियासतदान ने, बड़े सियासतदान ने की थी। तो तकरार के साथ जो है वो इस तरह के वाकयात स्वीडन में हो रहे हैं और अलबत्त दूसरे जो ममालिक हैं वहाँ पर भी हो चुके हैं, यूरोपीय ममालिक जो हैं, फ्रांस उनमें पेश रहा है। तो एक तो ये कुरान करीम की बेहरमती की है, इससे पहले जो है वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए गए थे तौहीन आमेज़, और इस तरह हम कह सकते हैं कि मजमूई तौर पर इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है वो मगरिब में एक तरह का प्रोपेगंडा किया जा रहा है। और सबसे बड़ा मुहर्रिक जिसके बारे में आपने सवाल फरमाया, मुहर्रिक इसका इस्लामोफोबिया है। मुसलमानों को उस मुआशरे में मुदगम नहीं होने देना, यानी एक मकसद ये है कि मुसलमान जो है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है, उसको अलग रखा जाए मगरबी मुआशरे से और इस्लामोफोबिया फैलाया जाए। इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए भी मगरब ने बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल किए। एक तो खुद यही कि इस्लाम की मुख्तलिफ तरह से बेहरमती की गई, उसकी तालीमात को कुछ और ही अंदाज में और किसी दूसरे रंग में पेश किया गया। उसके लिए हत्ता कि मगरिब ने दाइश जैसे ग्रोह को जन्म दिया, वजूद बख्शा और उसको परवान चढ़ाया, और वो भी इस्लाम के नाम पर, और लोगों को और दुनिया वालों को और ख़ास तौर पर मगरिब वालों को ये दिखाने की और समझाने की कोशिश की गई कि ये इस्लाम जो है, एक मजहब जो तेज़ी के साथ फैल रहा है, उसकी हकीकत ये है, यानी हकीकी इस्लाम वो है जो दाइश के ज़रिए से उन्होंने बयान करना चाहा। तो मजमूई तौर पर हैं हम कह सकते हैं कि मगरिब वालों के नज़दीक जो सबसे बड़ा मुहर्रिक जो है वो इस्लामोफोबिया है, इस्लाम से लोगों को दूर करना है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इस्लाम बहुत तेज़ी के साथ मगरिब में फैल रहा है।
विश्व दर्पण। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की नब्ज टटोलकर विश्व भर में होने वाले परिवर्तनों की तह तक जाने वाला कार्यक्रम विश्व दर्पण। हर हफ्ते सोमवार को
भारत नियंत्रित कश्मीर की जनता ने भी पवित्र कुरान के अनादर पर आक्रोश व्यक्त करते हुए लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगाए। स्वीडन में पवित्र कुरान का अनादर करने वाला इराकी मूल का नागरिक था, जिसके बाद पूरे इराक में प्रदर्शन फूट पड़े और जनता ने स्वीडन के दूतावास के बाहर प्रदर्शन करके उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करने और कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। तेहरान स्थित टीकाकार गुलशन अब्बास नकवी कहते हैं कि यूरोप में इस्लाम के विस्तार से यूरोपीय देश भयभीत हैं और यही वजह है कि वो सुनियोजित ढंग से ये कार्य अंजाम दे रहे हैं।
खुद स्वीडन में भी अगर आप देखें तो 1966 में वहाँ पर मुसलमानों की आबादी तकरीबन 1000 के करीब थी, लेकिन अब इस रवां साल में मुसलमानों की आबादी जो है वो तकरीबन 8 लाख के करीब तक पहुँच चुकी है। तो यही सूरत हाल जो है वो मगरिब के दूसरे ममालिक में, फ्रांस में भी जो है वो मुसलमानों की दूसरी बड़ी आबादी, मुसलमान दूसरी बड़ी आबादी में है, यानी आबादी के एतबार से उनकी जो नफूस जो है, उनकी जमीयत जो है वो दूसरे नंबर पर है। और इसी तरह कहते हैं कि जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं और जो आदाद व शुमार सामने आ रहे हैं, तो उनके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि आइंदा 3 अशरों के दौरान यानी 30 बरसों के दौरान इस्लाम जो है वो मगरिब में भी हरफ अव्वल उसका होगा, सफ़ अव्वल में, यानी सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो मुसलमानों की होगी मगरिब में। तो ज़ाहिर है, और फिर ये भी बाकायदा तौर पर मगरिब वाले समझते हैं कि अगर उनके जो सोच है, जो उनका मकतब है मगरिब के लिए, मगरबी ज़िंदगी के लिए, और जो उनकी आइडियालॉजी है उसके लिए अगर कोई चीज़ ख़तरा है, उनकी बका के लिए खतरा बन सकती है उनकी आइडियोलॉजी के लिए, तो वो इस्लाम है। इसलिए वो इस्लाम के खिलाफ नफरत पैदा करना चाहते हैं और इसके लिए मुख्तलिफ तरह के लोगों को इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ तरह की तंजीमों को, दहशतगर्द तंजीमों को इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है कि वहां पर जो जमहूरियत है उसका ताल्लुक लोगों की राय के साथ है, तो वहां पर वो चाहते ये हैं कि जो अक्सरियत जो कहे उसी पर अमल किया जाना चाहिए। उनको ना दीन से कोई ताल्लुक है, आप जानते हैं कि खुद अपने यानी जो उनका मजहब है, जो अपनी उनकी शरीयत है ईसाइत जो है, खुद उसके खिलाफ भी वो लोग उठ खड़े, वो उसकी तालीमात को भी नहीं मानते। तो उनको दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है उनका, वो चाहते ये हैं कि उनको मादर पिदर आज़ादी हासिल हो, और जाहिर है कि इस्लाम जो है वो महदूद करता है, हर तरह की आज़ादी की वो इजाज़त नहीं देता, बल्कि सिर्फ उन्हीं आज़ादियों की इजाज़त देता है जो इंसानी शराफत का तकाजा होती हैं, जिनमें इंसानी इज्जत वक़ार जो है वो पाया जाता है। तो इसलिए जाहिर है कि वो इस्लाम को अपनी उन नाजायज़ मैं कहूँगा और गैर इंसानी आज़ादियों के खिलाफ समझते हैं।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाज़त दीजिए।
अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम वहाबियत और वास्तविकता।
वहाबियत और वास्तविकता।
दोस्तों, कार्यक्रम वहाबियत और वास्तविकता की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं अख्तर रिजवी और स्वाति का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, अब तक हमने वहाबियत की वास्तविकता के बारे में चर्चा की। ये क्रम पिछले कई कार्यक्रमों में जारी रहा। अध्ययन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि वहाबियों की कोई भी बात वास्तविक इस्लाम की शिक्षाओं से नजदीक नहीं है। आज हम वहाबियों के उस दावे के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर वह सिद्ध हो गया तो पता चलेगा कि वास्तव में मुसलमान है। आइए इस बारे में चर्चा शुरू करते हैं।
मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के अनुयायियों को वहाबियों के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों का यह मानना है कि वहाबियत के प्रमुख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के पिता हम्बली पद के अनुयायी थे, इसीलिए उसको भी हम्बली होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है। इसका कारण यह है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की विचारधारा अपने पिता और भाई दोनों से ही अलग थी, जो अपने जमाने के धर्मगुरु थे। यहां तक कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के शिक्षक और उसको पढ़ाने वाले भी उसकी विचारधारा के विरोधी थे। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के भाई ने अपने ही भाई की विचारधारा के विरुद्ध एक किताब भी लिखी थी।
इन बातों के बावजूद वहाबी स्वयं को हम्बली दर्शाने के प्रयास करते थे। शायद उसका एक कारण अहमद बिन हम्बल द्वारा पवित्र कुरान की आयतों के विदित रूप का अनुसरण करना था। अहमद बिन हम्बल दूसरी हिजरी शताब्दी के प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरु थे। उन्होंने पैगंबर इस्लाम के पवित्र कथनों को एकत्रित करने और उनको याद करने के लिए अथक प्रयास किए थे। कुछ लोगों का ये मानना है कि उनको 10,00,000 हदीसें याद थी, इसलिए अहमद बिन हम्बल को इमाम मुहद्दिसीन भी कहा जाता है। मुसलमानों का हम्बली पंथ उन्हीं का अनुयायी है।
दोस्तों, अहमद बिन हम्बल को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों और साथियों के साथियों अर्थात ताबईन के कथनों को बहुत अधिक महत्व देते हुए देखा जा सकता है। अहमद बिन हम्बल हमेशा ही आयतों और हदीसों के विदित रूप के हिसाब से व्यवहार करते थे। वे तावील जैसे काम का हमेशा विरोध करते थे। उनका मानना था कि आस्था से संबंधित विषयों को केवल रिवायतों के माध्यम से समझना चाहिए। वे कहते थे कि इस बारे में बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अहमद बिन हम्बल हमेशा ही अपने अनुयायियों से कहा करते थे कि वे सलफ साले का अनुसरण करें। यही कारण है कि अहमद बिन हम्बल के कुछ अनुयायी स्वयं को सलफी कहते हैं।
सलफ अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पूर्वज। सलफी उन लोगों को कहा जाता है जो पूर्वजों की परंपराओं का अनुसरण करते हैं। जहां पर वहाबी शब्द का प्रयोग होता है, वहां पर सलफी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। वहाबियों द्वारा स्वयं को सलफी कहलवाने के बावजूद हम यह देखते हैं कि अहमद बिन हम्बल अपने अनुयायियों को जो पाठ देते थे उसमें और वहाबियों की शिक्षाओं में बहुत अंतर पाया जाता। इस बात को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। पवित्र कुरान में यदुल्ला और वजहुल्ला शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनका अर्थ होता है अल्लाह का हाथ और अल्लाह का चेहरा।
इन शब्दों के संबंध में अहमद बिन हम्बल का मानना था कि ईश्वर का ना तो चेहरा है और न ही उसका कोई हाथ, क्योंकि वो निराकार है। ईश्वर किसी के भी समान नहीं है। उनके इन्हीं विचारों के आधार पर अबुल फजल बैहकी मानते हैं कि अहमद बिन हम्बल ईश्वर के लिए शरीर को नहीं मानते थे। इस्लाम में ईश्वर के लिए शरीर मानना गलत माना गया है। यह बात उसकी मूल शिक्षाओं से विरोधाभास रखती है।
वहाबियों और हम्बलियों के बीच एक अन्य महत्वपूर्ण मतभेद कुफ्र को लेकर अब भी मौजूद है।
हम्बल अपने काल के बहुत से विचारकों से भिन्न विचार रखते थे, इसीलिए अब्बासी खलीफाओं की ओर से उन पर अत्याचार भी किए जाते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद अहमद बिन हम्बल ने कभी भी इस्लाम के किसी भी पंथ को काफिर नहीं माना। जो लोग पैगंबर इस्लाम और उनके पवित्र परिजनों की कब्रों और मजारों पर दर्शन के लिए जाते हैं, उनको वे कभी भी काफिर नहीं कहते थे, जबकि वहां भी ऐसा कहते हैं और करते हैं। हालांकि अहमद बिन हम्बल पवित्र कुरान की आयतों और पैगंबर इस्लाम के कथनों के विदित रूप के हिसाब से ही उनकी व्याख्या के पक्षधर थे, किंतु कहीं कहीं पर वे इसको समझने में बुद्धि के प्रयोग को भी महत्व देते थे।
उनके हिसाब से कुरान की कुछ आयतें ऐसी हैं जिनका केवल शाब्दिक अनुवाद नहीं किया जा सकता, जैसे सूरह फज्र की आयत संख्या 22। इसमें कहा गया है कि ईश्वर और उसके फरिश्ते प्रलय में कतार में आएंगे, अर्थात लाइनों में होंगे। आयत का विद्युत रूप तो ये बताता है कि प्रलय में ईश्वर उपस्थित होगा, जबकि वो तो निराकार है। यहाँ पर अहमद बिन हम्बल ने इस बात को आदेश या पूर्ण के रूप में समझाया है। ये बात ईश्वर के शारीरिक रूप के ना होने को बताती है। वास्तव में इस बात को बुद्धि के बिना समझना संभव नहीं है।
इन बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि अहमद बिन हम्बल पूरी तरह से बुद्धि के न प्रयोग करने के पक्षधर नहीं रहे, जैसा कि उनके बारे में मशहूर किया गया। जो बातें हमने अब तक बताई उससे तो यह ज्ञात हो गया कि पवित्र कुरान की आयतों को समझने में अहमद बिन हम्बल केवल विदित रूप को प्रयोग करने के साथ ही बुद्धि के प्रयोग के भी पक्षधर थे, किन्तु उनका अनुसरण का दावा करने वाले इब्ने तैमिया ईश्वर की कुछ विशेषताओं को साकार रूप देने के कारण ईश्वर के निराकार होने के विरोधी हो गए। इस हिसाब से वे ईश्वर के लिए शरीर के पक्षधर हो गए। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अहमद बिन हम्बल की सतही सोच के कारण उनके विचार भ्रष्ट हो गए। इब्ने तैमिया के भ्रष्ट विचारों के ही कारण उसके काल के सारे ही धर्मगुरु उसके विरोधी थे। कोई भी धर्मगुरु इसकी विचारधारा का समर्थन नहीं करता था। इब्ने तैमिया के भ्रष्ट विचारों के ही कारण उसको अपने जीवन का अधिकांश समय जेलों में गुजारना पड़ा था।
ये बात बहुत ही खेद के साथ कहनी पड़ रही है कि इस्लामी जगत की एक ज्वलंत समस्या बुद्धि के प्रयोग से दूरी और सतही सोच है। इस्लाम के उदय काल के आरंभ से भी यहूदियों की कुछ गलत परंपराएं मुसलमानों में पहुंच चुकी थी, जिनको सामान्यतः इसराइलियात के नाम से जाना जाता है। धर्म के नाम पर ये कुरीतियां मुसलमानों में फैल गईं। ये कैसे संभव है कि एक मुसलमान अपने दैनिक जीवन में उस बुद्धि के प्रयोग से दूर रहे जिसके प्रयोग पर पवित्र कुरान में बहुत ज्यादा बल दिया गया है। जानकारों का कहना है कि सोच विचार या बुद्धि के प्रयोग जैसे शब्दों को पवित्र कुरान में 300 से ज्यादा बार प्रयोग किया गया है।
इससे पता चलता है कि ईश्वर चाहता है कि मुसलमान अपनी बुद्धि का अधिक से अधिक प्रयोग करें। ईश्वर पवित्र कुरान में कहता है कि अधिक से अधिक सोच विचार से काम लो, सृष्टि के बारे में चिंतन मनन करो। कई स्थानों पर सोच विचार न करने वालों की निंदा की गई है। पवित्र कुरान के हिसाब से सोच विचार करने वाले और ऐसा न करने वाले ज्ञानी और अज्ञानी कभी भी बराबर नहीं हो सकते। सूरह अनाम की आयत संख्या 50 में ईश्वर कह रहा है कि क्या देखने वाले और अंधे एक समान हैं? तुम क्यों सोच विचार नहीं करते? कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस्लाम में सोच विचार करने को बहुत महत्व दिया गया है, और जो लोग ऐसा नहीं करते उनकी निंदा भी की गई है।
इस बात को तो हम सब जानते हैं कि इस्लाम एक परिपूर्ण धर्म है, इसमें हर बात को स्पष्ट रूप से बताया गया है। मनुष्य बुद्धि का प्रयोग करके तरक्की कर सकता है, ऐसे में ये कैसे संभव है कि इस्लाम जैसा धर्म अपने अनुयायियों को बुद्धि के प्रयोग न करने का आदेश दे और ये कहे कि जो कुछ तुम सुनते चले आ रहे हो केवल उसको ही मानो, दूसरी तरफ अपना ध्यान ही न दो। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जीवन में अपने दोस्तों और अनुयायियों को सोच विचार करने और बुद्धि के प्रयोग के लिए प्रेरित किया करते थे। आपका एक कथन है कि बिना सोच विचार की उपासना की तुलना में कुछ समय का सोच विचार या चिंतन मनन 70 गुना अधिक महत्व रखता है।
सभी ईश्वरी दूत अपने काल के सबसे बड़े विचारक थे। यही कारण था कि ईश्वर ने उनको अपने काल के लोगों के लिए आदर्श निर्धारित किया था। हालांकि ये बात पूरी तरह से सही है कि अंतिम ईश्वरीय दूत हजरत मोहम्मद मुस्तफा की तुलना में हमारी सोच बहुत ही तुच्छ और कम है, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम इस्लाम को समझने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग न करें। वे लोग जो ये कहते हैं कि इस्लाम में बुद्धि के प्रयोग को मना किया गया है, वह पूरी तरह से निराधार बात कहते हैं। ऐसे में ये कहना गलत है कि इस्लाम को समझने में हमें केवल परंपराओं का अनुसरण करना चाहिए और बुद्धि का प्रयोग करने से बचना चाहिए।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए।
श्रोताओं, ये सभा आप रेडियो थेरान की हिंदी सेवा से सुन रहे थे। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त हुआ। खुदा हाफिज। Oh,